का था, रूह वही, रूप नया।
चट्टानों में आग के भाग दो में आपने सुना कि कर्नल जरगाम अपने दोस्त कर्नल डिक्सन को लेने के लिए स्टेशन चला गया। इमरान के मना किए जाने के बावजूद आरिफ और अनवर ने कर्नल के डर का राज कर्नल डिक्सन के सामने रख दिया। क्या कर्नल डिक्सन, उसकी बेटी और उसका दोस्त बारतोष इमरान के शक के दायरे में आ गए हैं? कहां गायब हो गए कर्नल जरगाम? क्या उन्हें किडनैप कर लिया गया? क्या इसका संबंध ली यूका से है? जानने के लिए सुनिए भाग 3। पुलिस हेडक्वार्टर के एक कमरे में इंस्पेक्टर खालिद मेज पर बैठा अपनी डाक खोल रहा था। वो तंदुरुस्त और नौजवान आदमी था, पहले फौज में था और जंग खत्म होने के बाद गुप्तचर विभाग में ले लिया गया था। आदमी जहीन था, इसलिए उसे इस महकमे में कोई परेशानी नहीं आई। अपने काम के कारण वो सबको पसंद था। चेहरे की बनावट सख्त दिल के आदमियों की सी थी, मगर उसके तौर तरीकों से सख्ती जाहिर नहीं होती थी। अपनी डाक देखने के बाद उसने कुर्सी पर टेक लगाई ही थी कि मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी। यस, उसने रिसीवर उठाकर माउथपीस में कहा, ओह अच्छा, ठीक है, मैं अभी हाजिर होता हूं। वो अपने कमरे से निकलकर डीएस के कमरे की तरफ रवाना हो गया। उसने दरवाजे की चेक हटाई। आ जाओ, डीएस ने कहा। फिर उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर खालिद बैठ गया। मैंने एक प्राइवेट काम के लिए तुम्हें बुलाया है। फरमाइए। फेडरल डिपार्टमेंट के कैप्टन फयाज का एक निजी खत मेरे पास आया है। कैप्टन फयाज, खालिद कुछ सोचता हुआ बोला, जी हाँ, शायद मैं उन्हें जानता हूं। उनका एक आदमी यहां आया हुआ है, वे चाहते हैं कि उसे जिस किस्म के मदद की जरूरत है दी जाए। उसका नाम है अली इमरान और वो कर्नल जरगाम के घर ठहरा हुआ है। किस सिलसिले में आया है ये भी उसी आदमी से मालूम हो सकेगा। ये रहा उसका फोटो। डीएस ने मेज के दराज में से एक तस्वीर निकालकर खालिद की तरफ बढ़ाई। ओके, बहुत अच्छा, मैं ख्याल रखूंगा, खालिद तस्वीर पर नजर जमाए हुए बोला। अच्छा, एक और बात, डीएस ने अपने पाइप में तंबाकू भरते हुए कहा, और शिफ्टन के केस में क्या हो रहा है? ये एक सिरदर्द है, मेरा ख्याल है कि इसमें जल्दी कामयाबी नहीं मिलेगी, खालिद ने एक लंबी सांस लेकर कहा। क्यों? हम ये भी नहीं जानते कि शिफ्टन कोई फर्द है या कोई गिरोह। इस शिफ्टन की तरफ से जितने लोगों को भी धमकी भरे खत मिल रहे हैं वे तो अब तक जिंदा हैं, और उनमें से अभी तक किसी ने ये खबर भी नहीं दी कि उनसे कोई रकम वसूली की गई हो। मैं सोचता हूँ शायद कोई शातिर आदमी खामखा सनसनी फैलाने के लिए ऐसा कर रहा है। करीब करीब शहर के हर बड़े आदमी को इस किस्म के खत मिले हैं और इन सब में किसी बड़ी रकम की मांग की गई है। कोई ऐसा भी है जिसने इस किस्म की कोई शिकायत ना की हो? डीएस ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरा ख्याल है शायद ही कोई बचा हो, खालिद ने कहा। जहन पे जोर दो, हो सकता है कि कोई रह गया हो। कर्नल जरगाम, डीएस ने मुस्कुरा कर कहा, उसकी तरफ से अभी तक इस किस्म की कोई खबर नहीं मिली, और फेडरल डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट एक ऐसे आदमी के लिए हमसे मदद मांग रहा है जो कर्नल जरगाम के यहाँ ठहरा है, क्या समझे? तब तो जरूर कोई बात है। बहुत ही खास, डीएस ने मुंह से पाइप निकाल कर कहा। मेरा ख्याल है कि तुम खुद ही उस आदमी से, अरे क्या नाम था उसका, अली इमरान से मिलो। जी, मैं जरूर मिलूंगा, मगर मालूम नहीं वो कौन और किस किस्म का आदमी है। बहरहाल ये तो मिलने पर ही मालूम हो सकेगा, डीएस ने कहा और अपनी मेज पर रखे हुए कागजों को देखने लगा। रात के खाने के समय सन्नाटा रहा। सबने बड़ी खामोशी से खाना खत्म किया और फिर कॉफी पीने के लिए बरामदे में जा बैठे। सूफी, मैं चाहता हूं कि पुलिस को इसकी खबर जरूर मिलनी चाहिए, कर्नल डिक्सन ने कहा। मेरी भी यही राय है, बारतोश ने कहा। वो बहुत कम बोलता था। अरे मैं क्या करूं, सोफिया ने उकताए हुए लहजे में कहा। डैड इस मामले को आम करना ही नहीं चाहते, पुलिस के तो सिरे से खिलाफ हैं। उन्होंने तो एक बार ये भी कहा था कि अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो तुम लोग फिक्रमंद मत होना, मैं खतरा दूर होते ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन पुलिस को इसकी खबर हरगिज ना हो। इमरान ने सोफिया की तरफ प्रशंसात्मक नजरों से देखा। जरगाम हमेशा से रहस्यमय तो रहा है, कर्नल डिक्सन बड़बड़ाया। यहाँ पर तो सभी रहस्यमय हैं, इमरान ने कहा और मार्था की तरफ देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। मैं सच कहता हूं कि तुम्हें अभी तक कोई नहीं समझ सका है। मुझे हैरत है कि जरगाम ने तुम्हें अपना सेक्रेटरी कैसे बना लिया, वो तो बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, कर्नल डिक्सन ने इमरान को देखते हुए कहा। मैं उन्हें कन्फ्यूशियस सुनाया करता हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। तुमने फिर उसका नाम लिया? अरे क्यों चढ़ाते हो मुझे, कर्नल बिफर गया। नहीं अंकल, ये इनकी आदत है, सोफिया जल्दी से बोली। बहुत ही गंदी आदत है, इमरान लापरवाही से कॉफी पीता रहा। अरे ये MSc और PhD है, आरिफ हंसकर बोला। फिर तुमने बकवास शुरू कर दी, अनवर ने दांत पीस कर कहा। अरे बोलने दो, मैं बुरा नहीं मानता। अरे कन्फ्यूशियस सॉरी, इमरान ने कहा और बौखलाहट की एक्टिंग के साथ अपना मुंह दोनों हाथों से बंद कर लिया। मार्था और सोफिया हंस पड़ी, इस बार कर्नल भी हंसने लगा। बारतोष का चेहरा बंजर का बंजर ही रहा, हल्की सी मुस्कुराहट की झलक तक न दिखाई दी। अचानक उन्होंने फाटक पर कदमों की आवाज सुनी, आने वाला इधर ही आ रहा था। वो अंधेरे में आंखें फाड़ने लगे। बाग के आखिरी सिरे पर काफी अंधेरा था, बरामदे में लगे हुए बल्बों की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती थी। फिर आने वाले की टांगें दिखाई दी, उसने रास्ता देखने के लिए एक छोटी सी टॉर्च जला रखी थी। आने वाला रोशनी में आ गया, वो उन सबके लिए अजनबी ही था, एक स्वस्थ आदमी जिसने कत्थई सर्ज का सूट पहन रखा था। माफ कीजिएगा, शायद मैंने डिस्टर्ब किया, क्या कर्नल साहब तशरीफ रखते हैं, उसने बरामदे के करीब आकर कहा। जी नहीं, तशरीफ लाइए, सोफिया जल्दी से बोली। आने वाला कुर्सी पर बैठ गया। सोफिया बोली, वो तो बाहर गए हैं, कब तक तशरीफ लाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कल तक आ जाएं, हो सकता है एक हफ्ते बाद। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, अजनबी ने कहा और मौजूद लोगों पर उचटती सी निगाहें डाली। इमरान को देखकर एक पल उस पर नजरें जमाए रहा और फिर बोला, कहाँ गए हैं? अफसोस कि वो अपना प्रोग्राम किसी को बताते नहीं, आप अपना कार्ड छोड़ जाइए, आते ही उन्हें बता दिया जाएगा, सोफिया बोली। बहुत जल्दी का काम है, अजनबी ने अफसोस जाहिर किया। आप वो काम मुझे बता सकते हैं, मैं कर्नल का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, इमरान बोला। ओह, अजनबी ने आश्चर्य व्यक्त किया, फिर संभल कर बोला, तब तो ठीक है, क्या आप अलग से थोड़ी तकलीफ करेंगे? बस इतना ही सा काम था, इमरान ने मूर्खों की तरह कहा। लेकिन मैं अलग थोड़ी सी तकलीफ का मतलब नहीं समझा, वो तकलीफ किस किस्म की होगी, गला तो ना घोंट दिया जाएगा? ओह नहीं नहीं, मेरा मतलब है जरा अलग चलेंगे। मैं अलग ही चलता हूँ, आज तक किसी से टांग बांध कर नहीं चला। अरे साहब, कहने का मतलब ये है कि जरा मेरे साथ आइए। ओहो, तो पहले क्यों नहीं कहा, चलिए चलिए, इमरान उठता हुआ बोला। वे दोनों उठकर बाग के फाटक पर आ गए। आप अली इमरान साहब हैं, अजनबी ने पूछा। मैं कर्नल का सेक्रेटरी हूँ। हाँ हाँ, सो तो ठीक है, देखिए मेरा ताल्लुक गुप्तचर विभाग से है और मेरा नाम खालिद है। हमें फेडरल डिपार्टमेंट के कैप्टन की तरफ से हिदायत मिली है कि हम आपकी हर तरह से मदद करें। ओह फयाज, हाँ हाँ हाँ, बड़ा ग्रेट आदमी है और यारों का यार है। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी सी बात के लिए अपने महकमे के आदमियों को खत लिख देगा। वाह भाई वाह, क्या बात है, इंस्पेक्टर खालिद ने पूछा। क्या उसने वो बात नहीं लिखी? जी नहीं। हाँ लिखता ही क्या, बस बात ये है मिस्टर खालिद कि मुझे बटेर खाने और बटेर लड़ाने दोनों का शौक है और आपके यहाँ बटेरों के शिकार पर पाबंदी है। फयाज ने कहा था कि मैं आपको इजाजत दिला दूंगा। खालिद कुछ पल हैरत से इमरान को देखता रहा और फिर बोला, आपने ये क्यों कहा था कि आप कर्नल के सेक्रेटरी हैं? अरे तो फिर क्या कहता? शायद आपको दूसरी हैसियत से एतराज है। बिल्कुल ठीक मिस्टर खालिद, बात दरअसल ये है कि मैं यहाँ आया था मेहमान की हैसियत से, लेकिन बाद में नौकरी मिल गई। कर्नल ने मुझे बेहद पसंद किया है, मैं उनके लिए दिन भर एयर गन से मक्खियां मारता रहता हूँ। आप मुझे टाल रहे हैं जनाब, खालिद ने हंसकर कहा। फिर उसने गंभीरता से कहा, हालांकि ये मामला बहुत अहम है। कैसा मामला? इमरान ने हैरत से कहा। कुछ भी हो, आप बहुत गहरे आदमी मालूम होते हैं। इसका मुझे यकीन है कि आप कैप्टन फयाज के खास आदमियों में से हैं। अच्छा चलिए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। हाँ हाँ जरूर कीजिए। क्या कर्नल ने सीधे फेडरल डिपार्टमेंट से मदद मांगी थी? इमरान चौंक कर उसे घूरने लगा। मदद? मैं नहीं समझा। देखिए जनाब, खालिद ने कहा, हो सकता है कि आप इस महकमे में बहुत दिनों से हों, लेकिन मैं अभी अनाड़ी हूं। यकीनन आप मुझसे सीनियर ही होंगे, इसीलिए मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा आप खुलकर बात कीजिए तो मैं शुक्रगुजार होऊंगा। अच्छा तो मैं खुलकर बात करूंगा, लेकिन पहले मुझे बात तो समझने दीजिए, आपके जहन में कर्नल के बारे में आखिर क्या है? कुछ नहीं, लेकिन एक बात, खालिद कुछ सोचता हुआ बोला, ठहरिए मैं बताता हूं। बात यह है कि आप सोनागिरी में नए आए हैं, हम लोग पिछले एक माह से एक रहस्यमय आदमी या गिरोह शिफ्टन की तलाश में है, जिसने यहाँ के दौलतमंद लोगों को धमकी भरे खत लिखे हैं, उनसे बड़ी रकमों की मांग की है। धमकी के मुताबिक पैसा ना देने पर उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि उन सब ने इसकी रिपोर्ट की तो है, मगर क्या? इमरान जल्दी से बोला, हमें कर्नल जरगाम की तरफ से इस किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली। तो आप तो आप जबरदस्ती शिकायत करवाना चाहते हैं? इमरान हंस पड़ा। ओहो देखिए, आप समझे नहीं, बात यह है कि आखिर कर्नल को क्यों छोड़ा गया, और अगर इसी तरह की कोई धमकी उन्हें मिली है तो उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं की? वाकई आप बहुत गहरे आदमी मालूम होते हैं, इमरान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अच्छा चलिए, फर्ज कीजिए कि कर्नल को भी धमकी का खत मिला, तो क्या ये जरूरी है कि आपके महकमे को इसकी खबर दे? मुमकिन है कि उन्होंने उसे मजाक समझा हो, और अगर मजाक न भी समझा हो तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने अलावा और किसी पर भरोसा नहीं होता। अब मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूँ कि कर्नल को भी इस किस्म का कोई खत मिला है या नहीं। मैं भरोसे से तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है, इमरान बोला। आपको कैप्टन फयाज ने यहाँ क्यों भेजा है? मेरी खोपड़ी के अंदर का भेजा बीच से क्रैक हो गया है, इसलिए गर्मियों में ठंडी हवा ही मुझे रास आती है, इसलिए। ओह तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं बताएंगे। खैर अच्छा, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कर्नल की वापसी का ही इंतजार करना पड़ेगा। वैसे फिर भी हम मिलते रहेंगे, इमरान ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। ओह जरूर जरूर जरूर, खालिद ने कहा और हाथ मिलाकर विदा हो गया। इमरान फिर बरामदे में लौट आया, यहाँ सब लोग बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। कौन था? सोफिया ने पूछा। गुप्तचर विभाग का इंस्पेक्टर खालिद। क्या? कर्नल डिक्सन ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या बात थी? सोफिया ने अधीर होकर पूछा। इस पर इमरान ने पूरी बात दोहरा दी, वे सब हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। उसने सोफिया से पूछा, क्या कर्नल को शिफ्टन की तरफ से कभी कोई खत मिला है? नहीं, अरे यही तो मैं कह रहा था कि आखिर उन्होंने अपने प्यारे सेक्रेटरी से उसका जिक्र क्यों नहीं किया।
तुमने दूसरे मामले का जिक्र नहीं किया, कर्नल डिक्सन ने पूछा। हरगिज नहीं, भला किस तरह कर सकता था।
तुम वाकई क्रैक मालूम होते हो। जी हाँ, कन्फ्यूशियस। मेरा अपना कॉल है कि अच्छा मुलाजिम वही है जो मालिक के हुक्म से न एक इंच इधर जाए न एक इंच उधर।
अरे तुम जहन्नुम में जाओ, कर्नल गुर्रा कर बोला और वहां से उठ गया।
इंस्पेक्टर खालिद सोनागिरी के जेफरीज होटल के बॉलरूम में खड़ा नाचते हुए जोड़ों का जायजा ले रहा था। उसके साथ उसके सेक्शन का डीएस भी था। देखिए वो रहा, खालिद ने इमरान की तरफ इशारा करके कहा। इमरान डिक्सन की लड़की मार्था के साथ नाच रहा था। आज सोफिया अपने मेहमानों समेत यहां आई थी लेकिन उसने नाच में हिस्सा नहीं लिया।
अच्छा, ये तो अभी लौंडा ही मालूम होता है।
खैर, मैंने कैप्टन फयाज से उसकी हैसियत के बारे में पूछा था। वो इधर शायद जरगाम की लड़की सोफिया है क्या? उसके साथ वो दाढ़ी वाला कौन है? डीएस ने आश्चर्य व्यक्त किया। कोई मेहमान है, बारतोष, चेकोस्लोवाकिया का बाशिंदा, और वो कर्नल डिक्सन है। वो उसकी लड़की मार्था इमरान के साथ नाच रही है। इस इमरान पर गहरी नजर रखो।
अच्छा, अब मैं जाऊंगा,
डीएस ने कहा और चला गया। नाच भी खत्म हो गया। इमरान और मार्था अपनी मेज की तरफ लौट आए। खालिद कुछ पल उन्हें घूरता रहा, फिर वो भी चला गया। इमरान बड़ी मौज में था। मार्था 2-3 दिनों से उससे काफी घुल मिल गई थी। वो थी ही कुछ इस किस्म की। आरिफ और अनवर से भी वो कुछ इस तरह घुल मिल गई थी जैसे बरसों पुरानी जान पहचान हो।
तुम अच्छा नाचते हो, उसने इमरान से कहा।
वाकई? इमरान ने हैरत से कहा। अगर ये बात है तो अब मैं दिन रात नाचा करूंगा। मेरे पापा बहुत ग्रेट आदमी हैं, उन्हें बहुत खुशी होगी।
क्या तुम वाकई एक बेवकूफ आदमी हो?
मार्था ने मुस्कुरा कर पूछा।
पापा तो यही कहते हैं।
और बच्चे की मम्मी का क्या ख्याल है?
मम्मी जूतियों से मरम्मत करने की स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए खास मौके पर ही अपने ख्यालात का इजहार करती हैं।
मैं समझी नहीं।
नहीं समझी होंगी, इंग्लैंड में जूतियों से इजहार ख्याल का रिवाज नहीं है ना।
इतने में आरिफ की किसी बात पर मार्था उसकी तरफ मुड़ी। वेटर उनके लिए कॉफी की ट्रे ला रहा था, उसमें एक गिलास ऑरेंज स्क्वॉश का भी था। ये सोफिया ने अपने लिए मंगवाया था। वेटर अभी दूर ही था कि उसके करीब से गुजरता हुआ एक आदमी उसकी ट्रे से टकरा गया। वेटर लड़खड़ाया जरूर मगर संभल गया और उसने ट्रे भी संभाल ली। इमरान सामने ही ये सब देख रहा था। उसके होंठ जरा सा खुले और फिर बराबर हो गए। वो उस आदमी को देख रहा था जो वेटर से टकराने के बाद उससे माफी मांगकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वेटर ने ट्रे मेज पर रखी, इमरान इस तरह दूसरी तरफ मुड़ा कि उसका हाथ ऑरेंज स्क्वाश के ग्लास से लगा और ग्लास उलट गया।
ओहो, ये क्या मुसीबत हो गई,
इमरान बौखला कर बोला और गिलास सीधा करने लगा।
तुम शायद शरीफ आदमियों के साथ नहीं रहे हो, हाँ?
कर्नल डिक्सन झुंझला गया लेकिन बारतोष उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। मैं अभी दूसरा लाता हूँ, इमरान ने सोफिया की तरफ देखकर कहा और गिलास उठाकर खड़ा हो गया। सोफिया कुछ न बोली, उसके चेहरे पर भी नागवारी नजर आ रही थी। इमरान ने काउंटर पर पहुंचकर दूसरा गिलास मांगा। इतनी देर में वेटर मेज साफ कर चुका था। इमरान ग्लास लेकर वापस आ गया। सोफिया की शलवार और मार्था की स्कर्ट पर ऑरेंज स्क्वॉश के धब्बे पड़ गए थे। ऐसी सूरत में वहां ज्यादा देर तक ठहरना करीब करीब नामुमकिन था। लेकिन अब सवाल ये था कि वो उन्हें किस तरह रोके। जाहिर है कि स्कर्ट और शलवार के धब्बे काफी बड़े थे और दूर से साफ नजर आ रहे थे।
तुम जैसे बदहवास आदमियों का अंजाम मैंने हमेशा बहुत बुरा देखा है,
कर्नल डिक्सन ने इमरान से कहा। हाँ, मुझे इसका तजुर्बा हो चुका है। एक बार मैंने संख्या के धोखे में लेमन ड्रॉप खा लिया था, इमरान ने सिर हिलाकर बोला। मार्था झल्लाहट के बावजूद मुस्कुरा पड़ी।
फिर क्या हुआ,
आरिफ ने पूछा।
बच्चा हुआ था और मुझे अंकल कहता था।
अरे तुम बहुत चहकते हो, लेकिन मार्था तुम पर हरगिज आशिक नहीं होगी।
ओहो, क्या फिजूल बकवास करने लगे,
सोफिया बिगड़कर बोली। इमरान कुछ न बोला, वो कुछ सोच रहा था और उसकी आंखें इस तरह फैल गई थीं जैसे कोई उल्लू अचानक रोशनी में पकड़ कर लाया गया हो। थोड़ी देर बाद वे सभी वापसी के लिए उठे। सोफिया की शलवार का धब्बा तो कमीज के नीचे छुप गया, लेकिन मार्था की सफेद स्कर्ट का धब्बा बड़ा बदनुमा मालूम हो रहा था। जैसे तैसे वो स्टेशन वैगन की तरफ आई। इमरान की वजह से जो मजा किरकिरा हो गया था उसका एहसास हर एक को था, लेकिन बुरा भला सुनाने के अलावा उसका और कोई कुछ कर भी क्या सकता था। स्टेशन वैगन कर्नल जरगाम की कोठी की तरफ रवाना हो गई। रात काफी खुशगवार थी और मार्था अनवर के करीब की सीट पर बैठी हुई थी, और इसीलिए अनवर ने गाड़ी की रफ्तार हल्की रखी थी। अचानक एक सुनसान सड़क पर उन्हें तीन वर्दीधारी पुलिस वाले नजर आए, जो हाथ उठाए गाड़ी को रुकवाने का इशारा कर रहे थे। अनवर ने रफ्तार और कम कर दी। स्टेशन वैगन उनके करीब पहुंचकर रुक गई। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर था और दो कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर आगे बढ़कर गाड़ी के करीब पहुंचकर बोला, अंदर की बत्ती जलाओ। क्यों? इमरान ने पूछा। हमें खबर मिली है कि इस गाड़ी में बेहोश लड़की है। बेशक है, इमरान ने कहकहा लगाया। अनवर ने अंदर का बल्ब रोशन कर दिया और सब इंस्पेक्टर चुंधियाई हुई आंखों से एक एक की तरफ देखने लगा। इमरान बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। कहां है? सब इंस्पेक्टर गर्जा। क्या मैं बेहोश नहीं हूं? इमरान नाक पर उंगली रख कर लचकता हुआ बोला, मैं बेहोश हूं, तभी तो मर्दाना लिबास पहनती हूं। ए, हटो भी। सोफिया, अनवर और आरिफ बेतहाशा हंसने लगे। ये क्या बेहूदगी है? सब इंस्पेक्टर झल्ला कर बोला, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस कसम की खबर आपको कहां से मिली? इमरान ने पूछा।
कुछ नहीं, जाओ जाओ, वो कोई दूसरी गाड़ी होगी। सब इंस्पेक्टर गाड़ी से हट गया और गाड़ी चल पड़ी। मार्था सोफिया से कहकहों की वजह पूछ रही थी और फिर वो भी हंसने लगी।
पता नहीं किस किस्म का आदमी है, उसने कहा। उसे उम्मीद थी कि इमरान इस पर कुछ कहेगा जरूर, लेकिन इमरान खामोश ही रहा। वो फिर गहरी सोच में डूब गया था। अभी रात ज्यादा नहीं गुजरी थी, इसलिए घर पहुंचकर वे सब के सब किसी ना किसी तफरीह में लग गए। अनवर और बारतोश बिलियर्ड्स खेल रहे थे, कर्नल डिक्सन और आरिफ ब्रिज खेलने के लिए सोफिया और मार्था का इंतजार कर रहे थे, जो कपड़े बदलने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। थोड़ी देर बाद इमरान ने मार्था के दरवाजे पर दस्तक दी।
कौन है?
अंदर से आवाज आई, इमरान द ग्रेट फूल। क्या बात है? मार्था ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। वो अपना स्कर्ट तब्दील कर चुकी थी। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारा स्कर्ट खराब हो गया। कोई बात नहीं। ओह नहीं, लाओ स्कर्ट मुझे दो, वरना वो धब्बा बिल्कुल खराब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो, लाओ तो, वरना मुझे और ज्यादा अफसोस होगा। तुमसे तो पीछा छुड़ाना ही मुश्किल हो जाता है। थोड़ी नानुकुर के बाद मार्था ने अपना स्कर्ट इमरान के हवाले कर दिया। अब वो सोफिया के कमरे में पहुंचा। उसके एक हाथ में मार्था का स्कर्ट था और दूसरे हाथ में दूध की बोतल। ये क्या है? सोफिया ने हैरत से पूछा। धब्बा छुड़ाने जा रहा हूं, लाओ तुम भी अपनी शलवार दो।
क्या बेतुकी बात है, इमरान साहब आप सचमुच कभी कभी बहुत बोर करते हैं।
नहीं लाओ, पानी नहीं लगेगा, दूध से साफ करूंगा।
मैं कुछ नहीं जानती, सोफिया भन्ना गई।
इमरान ने शलवार उठा ली जो अभी कुर्सी के हत्थे पर ही पड़ी हुई थी। सोफिया उकताए हुए अंदाज में उसकी हरकतें देखने लगी। उसने एक बड़े से प्याले में दूध उलटकर धब्बों पर मलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद धब्बे साफ हो गए। सोफिया की बड़ी बालों वाली ईरानी बिल्ली बार बार प्याले पर झपट रही थी। इमरान उसे हटाता जाता था। जब अपने काम से फारिग हो चुका तो बिल्ली दूध पर टूट पड़ी। इस बार इमरान ने उसे नहीं रोका।
क्या पानी से नहीं धो सकते थे? आखिर आपको अपनी बेवकूफी जाहिर करने का इतना शौक क्यों है? सोफिया बोली।
हैं? तो क्या मैंने कोई बेवकूफी की है? इमरान ने आश्चर्य व्यक्त किया।
खुदा के लिए बोर मत कीजिए, सोफिया ने बेजारी से कहा।
आदम ने जब उस दरख्त के करीब जाने में हिचकिचाहट जाहिर की थी, हव्वा ने भी यही कहा था। सोफिया कुछ ना बोली। उसने बिल्ली की तरफ देखा जो दूध पीते पीते एक तरफ लुढ़क गई।
अरे ये उसे क्या हो गया?
वो उठते हुए बोली। कुछ नहीं, इमरान ने बिल्ली की टांग पकड़कर उसे हाथ में लटका लिया।
क्या हुआ इसे?
सोफिया चीख कर बोली। कुछ नहीं, सिर्फ बेहोश हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। आखिर आप ये क्या बोल रहे हैं? सोफिया के लहजे में आश्चर्य मिश्रित झुंझलाहट थी। वो नकली पुलिस वाले एक बेहोश लड़की हमारी गाड़ी में जरूर पाते, मगर मैं इस तरह लटका नहीं सकता था।
क्या?
तो ये धब्बा? सोफिया आंखें फाड़ कर बोली। जाहिर है कि वो अमृत धारा के धब्बे तो थे नहीं, लेकिन इसका मतलब तुम्हारा अगवा, लेकिन मैंने उसे होने नहीं दिया।
आपने जानबूझकर गिलास में हाथ मारा था?
हाँ, कभी कभी ऐसी बेवकूफी भी सरजद हो जाती है, इमरान सिर हिलाकर बोला।
आपको कैसे मालूम हुआ था?
इमरान ने एक अज्ञात आदमी के वेटर से टकराने की दास्तान दोहराते हुए कहा। मेरी बाई आंख हमेशा खुली रहती है, मैंने उसे गिलास में कुछ डालते देखा था। सोफिया खौफ ज़दा नजर आने लगी। इमरान ने कहा, ओहो डरो नहीं, लेकिन तुम्हें हर हाल में मेरा पाबंद रहना पड़ेगा। सोफिया कुछ न बोली। वो इस बेवकूफ जैसे अक्लमंद आदमी को हैरत से देख रही थी। और हाँ, इस वाकये का जिक्र किसी से ना करना, इमरान ने बेहोश बिल्ली की तरफ इशारा करके कहा, आरिफ और अनवर से भी नहीं।
नहीं करूंगी इमरान साहब, आप वाकई ग्रेट हैं।
काश मेरे पापा भी यही समझते, इमरान ने गंभीर लहजे में कहा। इंस्पेक्टर खालिद ने बहुत जल्दी में फोन का रिसीवर उठाया। मैं खालिद हूँ, क्या आप मुझे फौरन वक्त दे सकेंगे? ओहो शुक्रिया शुक्रिया, मैं अभी हाजिर हुआ। उसने तेजी से रिसीवर रखा और कमरे से बाहर निकल गया। डीएस के अर्दली ने उसके लिए चिक उठाई और वो अंदर चला गया। डीएस ने सिर के इशारे से बैठने को कहा और पाइप को दांतों से निकाल कर झुक गया।
कर्नल जरगाम का मामला बहुत ज्यादा उलझ गया है, खालिद बोला।
क्यों, कोई नई बात?
जी हाँ, और बहुत ज्यादा अहम। मैंने कर्नल के नौकरों को टटोलने की बहुत कोशिश की, आखिर एक ने उगल ही दिया। कर्नल कहीं बाहर नहीं गया, बल्कि यक बयक कहीं गायब हो गया है।
खूब,
डीएस ने पाइप एश्रे पर उलटते हुए कहा और खालिद की आंखों में देखने लगा। वो मेहमानों को लेने के लिए स्टेशन गया था और फिर वापस नहीं आया।
वाह 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 वाह,
डीएस ने उंगली से मेज खटखटाते हुए कुछ सोचते हुए कहा।
उसके घर वालों को तो बड़ी फिक्र होगी।
कतई नहीं, यही तो हैरत की बात है।
सही बात,
डीएस ने पैर फैलाकर लंबी अंगड़ाई ली और कुर्सी की पीठ से टिक गया।
फिर तुम्हारा क्या ख्याल है?
डीएस ने थोड़ी देर बाद पूछा। मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका हूं।
वाह,
ये भी क्या कोई मुश्किल मसला है?
कर्नल जरगाम भी शिफ्टेन की धमकियों से बच ना सका होगा, लेकिन वो गायब हो गया।
उसने पुलिस को खबर नहीं दी, दूसरे ने पुलिस को खबर दी थी और वे सब मौजूद हैं। इस लाइन पर सोचने की कोशिश करो, डीएस मुस्कुराया। मैं सोच चुका हूं।
और फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे?
जी नहीं।
भाई कमाल है। अरे भाई, ये तो बहुत ही साफ इशारा है।
आप ही रहनुमाई कीजिए, मेरी तो अभी शुरुआत है, आप ही से सीखना है मुझे, खालिद ने कहा।
देखो, तुम दो ऐसे आदमियों के नाम धमकी के खत लिखो जिनमें से एक से तुम वाकिफ हो और दूसरे से ना वाकिफ। तुम अपनी मौजूदा हैसियत में दोनों को लिखते हो कि वे खतरे में हैं और किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। वो शख्स जो तुम्हें नहीं जानता उसे मजाक समझेगा, यही सोचेगा कि किसी ने उसे बेवकूफ बनाया है। लेकिन उस शख्स का इस पर क्या असर होगा जो तुमसे और तुम्हारे ओहदे से बखूबी वाकिफ है?
बदहवास हो जाएगा, खालिद बोला।
ठीक, उसी तरह शिफ्टेन के मामले को ले लो, हमारे लिए भी ये नया है। कर्नल हमारे पास शिकायत लेकर नहीं आया, इसका मतलब है कि वो शिफ्टेन से वाकिफ है, और इस तरह गायब हो जाने का मतलब हुआ कि शिफ्टेन इंतहाई खतरनाक है, इतना खतरनाक कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती।
मैं तो सोच रहा था कि कहीं कर्नल जरगाम ही शिफ्टेन ना हो, खालिद ने कहा।
अगर वो शिफ्टेन है तो उसके बेवकूफ होने में कोई शुबा नहीं है, डीएस बोला। अगर वो शिफ्टेन ही है तो उसे हमारे पास जरूर आना चाहिए था।
नहीं नहीं खालिद, वो शिफ्टेन नहीं है, वरना इस तरह गायब ना होता।
तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए?
कर्नल जरगाम की तलाश करो।
कुछ देर खामोशी रही, फिर डीएस ने पूछा,
इमरान का क्या रहा?
कुछ नहीं, उसकी शख्सियत भी बड़ी अजीब है।
डीएस हंसने लगा, फिर उसने कहा, कैप्टन फयाज ने मेरे तार का जवाब दिया है। इमरान के बारे में उसने लिखा है कि वो एक परले सिरे का बेवकूफ आदमी है, फयाज का दोस्त है, यहाँ घूमने आया है, अक्सर हिमाकतों के सिलसिले में मुसीबतें मोल ले बैठता है। इसीलिए फयाज ने मुझे खत दिया था कि अगर कोई ऐसी बात हो तो उसकी मदद ली जाए।
मगर साहब, वो कर्नल जरगाम का प्राइवेट सेक्रेटरी फिर कैसे हो गया?
मुझे भी फयाज की कहानी पर यकीन नहीं, ये फेडरल वाले कभी खुलकर कुछ बताते ही नहीं, डीएस ने कहा।
उसके बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आप सुन रहे थे कहानी चट्टानों में आग का भाग 3। क्या वाकई कैप्टन फयाज ने ही इमरान को कर्नल जरगाम के यहां भेजा है? क्या वाकई इमरान कर्नल जरगाम को वापस लेकर आ पाएगा? और कौन थे वो लोग जो चाहते थे कि सोफिया बेहोश हो जाए? कौन थे वो नकली पुलिस वाले? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए भाग 4।